एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं और उसके आइडियाज पर जिसने दुनिया भर में आर्थिक और राजनीतिक सोच पर आप कह सकते हैं गहरी छाप छोड़ी है।
हाँ, किताब है मिल्टन फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, यानी पूंजीवाद और स्वतंत्रता।
और ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा।
बिल्कुल, क्योंकि ये उन बुनियादी सवालों से जूझती है जो हम आज भी लगातार पूछ रहे हैं। व्यक्ति की आज़ादी और सरकार का दखल, इसके बीच सही बैलेंस क्या है?
और क्या आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी मुमकिन भी है? फ्रीडमैन ने इन सवालों के जो जवाब दिए वो काफ़ी दमदार थे और कई बार तो चौंकाने वाले भी।
हाँ, तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि फ्रीडमैन के इन मुख्य तर्कों को जरा खंगालें, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है।
हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने उस वक्त की सोच को कैसे चैलेंज किया और उनके विचारों का हमारे लिए आज क्या मतलब हो सकता है। उनका मानना था कि देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। समाज का आधार व्यक्ति है।
चलिए, तो पहले इस प्रभावशाली आवाज के पीछे जो इंसान थे, मिल्टन फ्रीडमैन, उन्हें थोड़ा जानते हैं। 1912 से 2006 तक का उनका जीवन रहा।
जी, वो सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि 20वीं सदी के सबसे जाने माने इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वो लीडर थे और 1976 में उन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला।
हाँ, और उन्हें इस किताब को लिखने के लिए क्या चीज खास बनाती है? मतलब क्यों सुने हम उन्हें?
देखिए, पहली बात तो ये कि उनमें गजब की क्षमता थी। वो मुश्किल से मुश्किल आर्थिक विचारों को बहुत ही आम भाषा में समझा सकते थे।
अच्छा।
दूसरी बात, उनका अपना तजुर्बा। उन्होंने महामंदी देखी थी, वर्ल्ड वॉर देखे थे, सरकार के सलाहकार भी रहे, तो इन सब ने उन्हें आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी के रिश्ते पर एक बहुत ही यूनिक नज़रिया दिया।
और उस समय का माहौल भी तो देखिए, वो ऐसे समय में लिख रहे थे जब दुनिया भर में बड़ी सरकार, वेलफेयर स्टेट और ये सोच हावी थी कि भाई सरकार ही सब कुछ ठीक रख सकती है।
बिल्कुल, कीनेजियन अर्थशास्त्र का बोलबाला था।
ऐसे में फ्रीडमैन लगभग एक अकेली पर बहुत बुलंद आवाज थे जो मुक्त बाजार और लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे थे।
और उनकी बातों में वजन इसलिए भी था क्योंकि वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे। उनका काम ठोस आंकड़ों और गहरी रिसर्च पर आधारित था, जैसे उनकी वो मशहूर किताब अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
सही कहा। तो आते हैं अब किताब पर, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इसका निचोड़ क्या है? मतलब क्या कहना चाहते थे फ्रीडमैन?
ये किताब आप कह सकती हैं एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो। ये उस आम समझ को बिल्कुल सीधी चुनौती देती है कि समाज की भलाई के लिए सरकार का ज्यादा से ज्यादा दखल जरूरी है। फ्रीडमैन कहते हैं नहीं, असल में इसका उल्टा सच है।
वो कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव है, बेस है।
बिल्कुल, किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो कुछ ऐसा है। पहला, सच्ची राजनीतिक आज़ादी तभी मुमकिन है जब आपके पास आर्थिक आज़ादी हो, जिसे वो प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद कहते हैं।
मतलब जहां लोग अपनी मर्जी से व्यापार कर सकें, नौकरियां चुन सकें बिना ज्यादा सरकारी रोक टोक के।
हाँ। दूसरा, समाज में चीजें बनाने बेचने मतलब आर्थिक गतिविधि का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रीडमैन का जवाब है मुक्त बाजार, जहां लोग आपसी मर्जी से लेन देन करें, वॉलंटरी एक्सचेंज।
उनका मानना था कि ये किसी भी सरकारी योजना या कंट्रोल से कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पार्टियों का फायदा होता है, तभी तो वो लेन देन करते हैं।
सही बात। और तीसरा और शायद सबसे अहम, सरकार का रोल क्या होना चाहिए? फ्रीडमैन के हिसाब से बहुत लिमिटेड।
एक रेफरी या अंपायर की तरह, है ना, जिसका काम खेल के नियम बनाना और लागू करना है, ना कि खुद खेलना।
एकदम सही। मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के आपसी कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करवाना, प्रॉपर्टी राइट्स तय करना और उनकी रक्षा करना।
और कुछ गिनी चुनी बाजार की दिक्कतें, जैसे शायद प्रदूषण या एकाधिकार यानी मोनोपोली, उनको संभालना।
बस, इससे ज्यादा दखलंदाजी उनके मुताबिक फायदे से ज्यादा नुकसान करती है, फ्रीडम कम करती है।
और किताब लिखने का उनका मकसद साफ था। वो उस दौर की जो मुख्य धारा थी, वेलफेयर स्टेट और कीनेजियन इकोनॉमिक्स,
हाँ,
जिसमें मानते थे कि सरकार खर्च करके इकोनॉमी को ठीक कर सकती है,
हाँ,
उसे वो चैलेंज करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा है।
और किताब हमें बेसिक प्रिंसिपल से लेकर बिल्कुल ठोस पॉलिसी सुझावों तक ले जाती है, दिखाती है कि कैसे उनके विचार असल दुनिया में लागू हो सकते हैं।
चलिए अब कुछ खास विचारों में और गहराई से उतरते हैं, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। शुरुआत करते हैं उस बुनियादी विचार से जो पूरी किताब की जड़ है।
हाँ, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का वो अटूट रिश्ता।
यहाँ फ्रीडमैन एक बहुत ही दमदार बात कहते हैं, थोड़ी डराने वाली भी।
उनका तर्क है कि जब सरकार अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेती है तो वो असल में लोगों की रोजी रोटी पर कब्जा कर लेती है।
और ये ताकत ये राजनीतिक विरोध को कुचलने का सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है।
बिल्कुल, मतलब सोचिए ना, अगर आपकी नौकरी, आपका व्यापार, सब कुछ सरकार के हाथ में हो।
हाँ, अगर सरकार ही तय करें कि आप क्या कमाएंगे, कहाँ काम करेंगे,
तो क्या आप सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेंगे? शायद नहीं।
वो नाजी जर्मनी और सोवियत रूस जैसे उदाहरण देते हैं, दिखाते हैं कि कैसे वहाँ आर्थिक नियंत्रण ने राजनीतिक दमन को आसान बना दिया।
दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मुक्त बाजार एक तरह का विकेंद्रीकृत शक्ति केंद्र है, डिसेंट्रलाइज्ड पावर।
जैसे हम वोट डालकर अपनी राजनीतिक पसंद बताते हैं, वैसे ही बाजार में हम अपने पैसे से, अपने डॉलर वोट से अपनी पसंद की चीजें चुनते हैं।
और ये सिस्टम, उनका मानना था, किसी भी सरकारी योजना से ज्यादा तेजी से लोगों की जरूरतों को पूरा करता है,
ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है।
और जब आर्थिक ताकत हजारों लाखों लोगों में बंटी होती है तो कोई एक राजनीतिक ताकत आसानी से सब पर हावी नहीं हो पाती।
ये एक तरह का चेक इन बैलेंस बन जाता है।
तो अगर आर्थिक आजादी इतनी जरूरी है और उसे बचाने के लिए बाजार अहम है, तो फिर सरकार का सही रोल क्या है? अध्याय दो में वो इसी पर आते हैं, सरकार का अंपायर वाला रोल।
हाँ, सरकार का काम खेल के नियम तय करना है। वो नियम क्या है? पहला, कानून व्यवस्था, ताकि लोग शांति से जी सके, व्यापार कर सकें।
दूसरा, लोगों के आपसी समझौते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें लागू करवाना।
तीसरा, संपत्ति के अधिकार, कौन सी चीज किसकी है ये साफ करना और उसकी रक्षा करना।
चौथा, एक स्थिर मुद्रा प्रणाली देना, स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम, ताकि लेनदेन भरोसेमंद हो।
और इसके अलावा बहुत ही सीमित मामलों में सरकार उन समस्याओं को देख सकती है जहां बाजार शायद खुद ठीक से काम न करे।
हाँ, जैसे कुछ तकनीकी एकाधिकार, जहां कंपटीशन मुमकिन ही ना हो, या फिर बाहरी प्रभाव, एक्सटर्नैलिटीज जिन्हें कहते हैं,
जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण जिसका असर सिर्फ खरीदने बेचने वाले पर नहीं बल्कि आस पड़ोस पूरे समाज पर पड़ता है।
लेकिन फ्रीडमैन यहाँ भी बहुत सावधान रहने को कहते हैं, बहुत कॉशियस।
बिल्कुल, वो चेतावनी देते हैं कि अक्सर इन्हीं अपवादों का बहाना बनाकर सरकार अपनी ताकत बेतहाशा बढ़ा लेती है।
हर सरकारी दखल से पहले ये पूछना जरूरी है, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा हैं?
और सबसे जरूरी, क्या लोग खुद मिलकर बिना सरकारी डंडे के इस मसले को सुलझा नहीं सकते
वॉलंटरी तरीके से? अब आते हैं पैसे और सरकारी खर्च के मामलों पर, अध्याय तीन और पांच। यहाँ फ्रीडमैन मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी पर जोर देते हैं।
इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने का तरीका।
वो कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को अपनी मर्जी से फैसले लेने के बजाय, जिसे डिस्क्रिशनरी पॉलिसी कहते हैं, पैसे की सप्लाई बढ़ाने के पक्के नियम बना देने चाहिए, रूल बेस्ड पॉलिसी।
उनका मानना था कि जब सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बार बार दखल देता है ना,
हाँ,
तो वो अक्सर हालात सुधारने के बजाय बिगाड़ देता है, अस्थिरता पैदा करता है।
इसका सबसे बड़ा सबूत वो 1930 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन को मानते हैं, उनके रिसर्च के मुताबिक।
हाँ, उनकी वो किताब।
हाँ, उनके मुताबिक ये बाजार की नाकामी नहीं थी, बल्कि ये सरकारी मौद्रिक नीति, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की भयंकर गलती थी। उन्होंने पैसे की सप्लाई को बुरी तरह सिकुड़ने दिया।
और वो सरकारी खर्च के जरिए अर्थव्यवस्था चमकाने वाले आइडिया, फिस्कल पॉलिसी, उसके भी सख्त खिलाफ थे।
हाँ, जो केन्जियन आइडिया था, उनका तर्क था कि ये तरीका काम नहीं करता, बस सरकारी कर्ज बढ़ाता है, सरकारी दखलंदाजी बढ़ाता है, और ये सब आखिर में हमारी आज़ादी पर ही चोट करता है।
अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिस पर फ्रीडमैन के विचारों ने शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ी है, शिक्षा, अध्याय छः।
हाँ, यहीं पर वो अपना मशहूर स्कूल वाउचर का आइडिया पेश करते हैं।
ये वाकई उस समय के हिसाब से तो बहुत रेडिकल था।
बिल्कुल, फ्रीडमैन मानते थे कि पढ़ी लिखी आबादी से पूरे समाज को फायदा होता है, ये एक तरह का पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है।
अच्छा,
इसलिए सरकार को शिक्षा के लिए पैसा देना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए।
लेकिन
उनका तर्क था, पैसा देने का मतलब ये नहीं कि सरकार को स्कूल चलाने भी चाहिए।
ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
हाँ, मतलब सरकार फंडिंग दे पर स्कूल न चलाए।
हाँ?
उनका प्रस्ताव था कि सरकार हर बच्चे के लिए
उसके माँ बाप को एक निश्चित रकम का वाउचर दे,
ठीक है,
और माँ बाप उस वाउचर का इस्तेमाल अपनी पसंद के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, धार्मिक हो, कोई भी उसकी फीस भरने में कर सकते हैं।
इसका मकसद क्या था?
मकसद स्कूलों के बीच मुकाबला, कॉम्पिटिशन पैदा करना। फ्रीडमैन का मानना था कि जब स्कूल बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए मुकाबला करेंगे
तो क्वालिटी सुधरेगी।
हाँ, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, नए नए तरीके आजमाए जाएंगे, इनोवेशन होगा, और सबसे बड़ी बात, माँ बाप को अपने बच्चों के लिए चुनने का असली अधिकार मिलेगा, चॉइस मिलेगी।
ये एक तरह से शिक्षा में सरकार के एकाधिकार को तोड़ने का तरीका था।
अब एक और बेहद संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे पर आते हैं, पूंजीवाद और भेदभाव, अध्याय 7।
हाँ, यहाँ फ्रीडमैन का तर्क थोड़ा चौंका सकता है। वो कहते हैं कि भेदभाव के खिलाफ सबसे असरदार हथियार प्रतिस्पर्धी बाजार खुद है।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ, बिल्कुल। कैसे?
उनका तर्क है कि भेदभाव करना महंगा सौदा है, इकोनॉमिकली इर्रेशनल है। सोचिए, अगर कोई मालिक सिर्फ मान लीजिए जाति या धर्म देखकर किसी काबिल इंसान को नौकरी नहीं देता, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है ना? कोई दूसरा समझदार मालिक उस काबिल इंसान को नौकरी देकर फायदा उठा लेगा।
अच्छा, हाँ, कॉम्पिटिशन के कारण।
हाँ, बाजार में टिके रहने के लिए आपको अक्सर काबिलियत को पहचानना पड़ता है, न कि चमड़ी का रंग या जन्मस्थान। बाजार काफी हद तक गुमनाम होता है, अनोनमस। वो आपकी योग्यता देखता है, आपकी पहचान कम।
बल्कि उनका तर्क तो ये था कि कई बार सरकारी नियम कानून ही भेदभाव को बढ़ाते हैं अनजाने में।
जैसे?
जैसे कई तरह के लाइसेंसिंग कानून या न्यूनतम मजदूरी कानून। वो कहते थे कि ये चीजें नए लोगों के लिए, खासकर हाशिए के समूहों के लिए, किसी पेशे या नौकरी में घुसना मुश्किल बना सकती हैं, एंट्री बैरियर बन जाती हैं।
इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा, एकाधिकार यानी मोनोपोली और लाइसेंसिंग, अध्याय 8 और 9।
फ्रीडमैन कहते हैं कि मुक्त बाजार में असली लंबे समय तक टिकने वाला एकाधिकार बनना बहुत मुश्किल है।
ज्यादातर एकाधिकार या तो सरकार खुद बनाती है या सरकारी लाइसेंस या नियमों के जरिए बनते हैं।
वो डॉक्टरों, वकीलों, यहाँ तक कि बाल काटने वालों के लिए भी जो जरूरी लाइसेंस की व्यवस्था होती है उस पर कड़ा सवाल उठाते हैं।
क्या ये वाकई ग्राहकों की हिफाजत के लिए है या फिर ये मौजूदा पेशेवरों को नए कॉम्पिटिशन से बचाने का एक तरीका है?
उनका मानना था कि ये लाइसेंसिंग प्रतिस्पर्धा रोकती है, कीमतें बढ़ाती हैं और नए लोगों को आने से रोकती है, इनोवेशन को भी रोकती है।
वो लाइसेंसिंग की जगह प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन का सुझाव देते हैं।
मतलब
कोई प्राइवेट संस्था या एसोसिएशन गुणवत्ता का ठप्पा दे सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, लेकिन ये जरूरी ना हो कि काम करने के लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए ही।
अच्छा, तो ग्राहक खुद तय करें कि उन्हें सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए या नहीं।
बिल्कुल, ये चुनने की आज़ादी देता है बिना मुकाबले को रोके।
और यहीं पर उनका वो मशहूर बयान भी आता है कि किसी व्यवसाय की, बिजनेस की एकमात्र सामाजिक जिम्मेदारी होती है नियमों के दायरे में रहकर मुनाफा कमाना।
हाँ, ये तो बहुत बार कोट किया जाता है और काफी विवादित भी रहा है।
उनका मानना था कि जब कंपनियां मुनाफा कमाने पर ध्यान देती हैं तो वो ग्राहकों को बेहतर चीज कम दाम पर देने की कोशिश करती हैं और इसी से समाज का भला होता है।
वो कहते थे कि सामाजिक कामों पर पैसा खर्च करना ये शेयरधारकों या ग्राहकों पर एक तरह का टैक्स लगाना है, जो बिजनेस लीडर्स का काम नहीं है।
आखिर में बात करते हैं आय के बंटवारे, सामाजिक कल्याण और गरीबी की, अध्याय 10, 11, 12।
फ्रीडमैन आय की असमानता को काफी हद तक लोगों की मेहनत, काबिलियत और उनकी पसंद का नतीजा मानते थे, डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी।
वो अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के खिलाफ थे।
हाँ, उनका तर्क था कि ये सफलता को सजा देने जैसा है और मेहनत करने का हौसला तोड़ता है।
गरीबी मिटाने के लिए वो मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं, जैसे सरकारी राशन, आवास योजनाएं, इन सब की जगह एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाते हैं।
हाँ, नकारात्मक आयकर, नेगेटिव इनकम टैक्स या NIT।
इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग एक न्यूनतम आय से कम कमाते हैं उन्हें सरकार टैक्स देने के बजाय सीधे पैसे देगी, कैश ट्रांसफर।
ये नौकरशाही को कम करेगा, उनका मानना था, और गरीबों को अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने की आजादी देगा, ज्यादा डिग्निटी देगा।
लेकिन उनका सबसे बड़ा तर्क यही था कि गरीबी हटाने का सबसे पक्का तरीका है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ।
और वो ग्रोथ कहाँ से आती है? मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा से। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो सबके लिए मौके बढ़ते हैं।
वो मानते थे कि सरकारी योजनाएं अक्सर इस ग्रोथ के रास्ते में रोड़ा बनती है।
तो इन सभी विचारों से कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं, अगर समराइज करना हो तो?
मुझे लगता है सबसे पहला और सबसे जरूरी है, आजादी को बांटा नहीं जा सकता, स्वतंत्रता इंडिविजिबल है। आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा लंबे समय तक नहीं टिक सकता।
दूसरा बड़ा संदेश है स्वैच्छिक सहयोग की ताकत, वॉलंटरी कोऑपरेशन। हाँ, बाजार लोगों की आपसी मर्जी से चलता है। लेन देन तभी होता है जब दोनों को फायदा दिखे, जबकि सरकारी कार्रवाई अक्सर जबरदस्ती पर आधारित होती है, टैक्स, नियम, कानून।
फ्रीडमैन का मानना था कि आपसी मर्जी वाला रास्ता नैतिक रूप से भी बेहतर है और व्यवहारिक रूप से भी ज्यादा कारगर।
तीसरा, सरकारी दखल के अनचाहे नतीजे, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस।
हाँ, नेक इरादों से बनी नीतियां भी अक्सर नुकसान कर बैठती हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी शायद बेरोजगारी बढ़ा दे।
फ्रीडमैन मानते थे कि सरकारी विफलता का खतरा बाजार विफलता से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। हमें सरकार की क्षमता को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए।
और चौथा, बाजार को एक लोकतांत्रिक ताकत के रूप में देखना। ये सुनने में अजीब लग सकता है,
हाँ,
लेकिन उनका तर्क था कि बाजार लोगों को वही देता है जो वो चाहते हैं, अपने डॉलर वोट के जरिए।
ये अल्पसंख्यकों की पसंद का भी ध्यान रखता है, जिसे शायद राजनीतिक बहुमत नजरअंदाज कर दे। और प्रतिस्पर्धा न सिर्फ चीजों को बेहतर बनाती है, बल्कि भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को भी कमजोर करती है।
ये सारे मुद्दे ये भारत जैसे देश में भी लगातार बहस का हिस्सा रहते हैं, है ना?
बिल्कुल। जब हम शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, या सरकारी योजनाओं के असर की,
तो कहीं ना कहीं यही सवाल उठते हैं, सरकार का रोल कितना हो, बाजार का कितना। फ्रीडमैन का नज़रिया हमें इन बहसों को एक अलग, शायद ज़्यादा आलोचनात्मक कोण से देखने में मदद करता है।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो एकदम दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे ये विचार।
एक मुक्त अर्थव्यवस्था पर आपत्ति का एक प्रमुख स्रोत ठीक यही है कि ये लोगों को वो देता है जो वे चाहते हैं, बजाय इसके कि कोई विशेष समूह सोचे कि उन्हें क्या चाहिए।
वाह, मतलब दिक्कत ये नहीं कि बाजार लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करता,
बल्कि ये कि वो सब की सही जरूरतें पूरी नहीं करता, जैसी कुछ ज्ञानी लोग सोचते हैं।
ये सीधी चोट है उस पैटर्नलिस्टिक सोच पर, जहां कुछ लोग तय करना चाहते हैं कि बाकियों के लिए क्या अच्छा है। ये व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता का जबरदस्त बचाव है।
एक और विचार, समाज की महान प्रगति कभी भी केंद्रीकृत सरकार से नहीं हुई है।
ये याद दिलाता है कि बड़े बड़े आविष्कार, नई खोजें, कला या विज्ञान में तरक्की, ये सब अक्सर व्यक्तियों या छोटे समूहों की रचनात्मकता और जुनून से आती हैं।
हाँ, ना कि किसी सरकारी पंचवर्षीय योजना से। ये आजादी और विकेंद्रीकरण की ताकत को दिखाता है, बॉटम अप इनोवेशन।
और ये वाला, व्यवसाय की एक और केवल एक ही सामाजिक जिम्मेदारी है, नियमों के भीतर रहकर मुनाफा बढ़ाना।
ये आज भी सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाले विचारों में से एक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहस इसी के इर्द गिर्द घूमती है।
लेकिन फ्रीडमैन का हक साफ था, जब व्यापार मुनाफे पर ध्यान देता है तो वो कुशलता लाता है, नए उत्पाद बनाता है, नौकरियां पैदा करता है, और यही उसका सबसे बड़ा सामाजिक योगदान है।
और आखिर में, एक समाज जो समानता, परिणाम की समानता के अर्थ में को स्वतंत्रता से आगे रखता है, उसका अंत न तो समानता से होगा और न ही स्वतंत्रता से।
ये बहुत गहरी बात है।
ये अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
और परिणाम की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इसके बीच के तनाव को दिखाता है।
फ्रीडमैन कह रहे हैं कि जब आप जबरदस्ती सबको बराबर करने की कोशिश करते हैं परिणाम में, तो आप लोगों की आज़ादी छीन लेते हैं,
और आखिर में न समानता मिलती है न आज़ादी, दोनों हाथ से जाती हैं।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये सिर्फ किताबी अकेडमिक बातें तो नहीं है?
बिल्कुल नहीं। पहला तो ये कि हम सरकारी नीतियों को देखने का एक नया चश्मा पहन सकते हैं। कोई भी नई योजना या नियम आए तो हम फ्रीडमैन वाले सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये जरूरी है, क्या इसके बुरे असर हो सकते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस,
क्या इसका कोई बाजार आधारित हल हो सकता है, जैसे किसी चीज पर सब्सिडी देने के बजाय क्या सीधे लोगों को पैसे देना बेहतर है, जैसा NIT का आइडिया था।
दूसरा, शिक्षा के बारे में सोचते हुए, क्या हमारे बच्चों के स्कूलों में वाकई प्रतिस्पर्धा है, क्या माँ बाप के पास असली विकल्प हैं?
फ्रीडमैन का वाउचर वाला आइडिया, चाहे वो लागू हो या ना हो, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मौजूदा सिस्टम ही सबसे अच्छा है या इसमें बदलाव की गुंजाइश है।
तीसरा, अपने पैसे और भविष्य की योजना के बारे में, पर्सनल फाइनेंस।
हाँ, फ्रीडमैन सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बहुत भरोसा नहीं करते थे। उनके विचार हमें खुद की बचत, निवेश और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की अहमियत याद दिलाते हैं।
और चौथा, अगर कोई व्यापार करता है या करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप
के साथ किया जाए
तो ये समाज के लिए अच्छा है।
ये उद्यमिता को एक सकारात्मक प्रोडक्टिव गतिविधि के रूप में दिखाता है।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से सबसे बड़ी सीख क्या रही आपके लिए?
मेरे लिए शायद यही कि आर्थिक और राजनीतिक आजादी सच में एक दूसरे से जुड़ी है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और सरकार की ताकत पर लगाम रखना कितना जरूरी है, चाहे उसके इरादे कितने ही नेक क्यों ना लगें।
और मेरे लिए ये कि बाजार परफेक्ट नहीं है, उसमें यकीनन कमियां हैं, लेकिन सरकारी दखलंदाजी के अपने खतरे हैं, अपने फेलियर मोड्स हैं, और कई बार वो खतरे बाजार की कमियों से भी बड़े हो सकते हैं।
हाँ, ये सवाल हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो समस्या हम देख रहे हैं वो बाजार की वजह से है या सरकारी दखल की वजह से।
मुझे व्यक्तिगत रूप से वो तर्क बहुत दिलचस्प लगा कि कैसे प्रतिस्पर्धी बाजार अनजाने में ही भेदभाव को कम कर सकता है, क्योंकि भेदभाव करना महंगा पड़ता है। ये वाकई एक अलग नजरिया है।
और ये विचार कि तरक्की नीचे से ऊपर जाती है व्यक्तियों के जरिए, न कि ऊपर से नीचे के आदेशों से, ये भी काफी उम्मीद जगाता है। ये व्यक्तिगत पहल और जमीनी स्तर पर काम करने की अहमियत बताता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।